वेद मंत्रों की को समझने की सीरीज में आज एक बहुत फेमस प्रसिद्ध सूक्त है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद का, जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में भी अलग अलग प्रकार में मिलता है। वन ऑफ द फेमस सूक्त में है, सूक्त मतलब बल्क ऑफ मंत्र, जो क्रिएशन, सृष्टि और परमात्मा के संबंध से रिलेटेड है, मतलब जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कॉन्सेप्ट से थोड़ी बहुत कनेक्टेड है। पहला मंत्र लेते हैं, सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। वो पुरुष जो हजार सर वाले, हजार आंख वाले, हजार पैर वाले, सारे संसार को हर तरह से इन्वॉल्व ढक रखा है और उसके बावजूद भी वो उनसे बियॉन्ड है, और जो 10 अंगुली उनके मेजर के साथ बाहर निकला हुआ है। तो शब्द थोड़े टेक्निकल है तो मुश्किल है समझने में आमतौर पर ट्रांसलेशन को। पहली चीज है पुरुष, देन सहस्र हजार के बारे में बात करते। तो जनरली जब आप डिक्शनरी देखते हैं या बातचीत में किसी भी नॉर्मल इंडियन लैंग्वेज में, इवन जो लोकल कॉलोकल संस्कृत में, तो पुरुष का मतलब मैन, मेल होता है, मैन होता है, मतलब नर। पर यहां पुरुष का अर्थ कोई मैन, ह्यूमन बीइंग या मेल फीमेल से नहीं है। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में पुरुष शब्द का जो यूज होता है वो आत्मा के लिए यूज होता है, और वो भी कोई सेंस ऑफ मेल फीमेल का नहीं, अपितु उसकी जो एटिमोलॉजी है, जो व्युत्पत्ति है, वो है पुर। पुर जानते हैं ना, विकासपुरी, यमुनापुर, ये भारत में सैकड़ों शहरों का, कॉलोनियों का, कम्युनिटी का नाम है पुर, पुर या पुरी। तो पुर या पुरी का मतलब होता है सिटी, हैबिटेट, जहां कोई, जहां हैबिटेशन है, लोग रहते हैं या कोई रहता है, उसको पुर या पुरी कहते हैं। और किसी सिटी या हैबिटेट को पुर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके लिए जो रूट वर्ड है वो है पुहु, प्री पूर्त हो, मतलब टू फील, जिसको बार बार फील किया जाता है, भरा जाता है। तो शहरों को या हैबिटेट को भरा कैसे जाता है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ निकल जाते हैं ना, जब मरते हैं फिर नए लोग भरते रहते हैं। जैसे कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ फीलिंग, आपकी गांव में, आपकी शहर में हमेशा नए पैदा होते हैं टू फील इट, जो पुराने निकल जाते हैं, तो इसीलिए उसको पूर कहते हैं। तो जो उस पूर में रहने वाला है, पूरी शेते शा, जो पूर में रहने वाला है, लेटा हुआ है, उसको पुरुष कहते हैं। तो जिसको आम भाषा में कहते हैं, किसी सिटी में रहने वाले को आप सिटीजन कहते हैं, इसी तरह पूर में, नगर में रहने वाले को हिंदी में आप नागरिक कहते हैं, तो वैदिक शब्द में पूर्व में रहने वाले को पुरुष कहते हैं। पर ये पुरुष किसी नगर, सिटी या गांव की बात नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इस शरीर रूपक जो हैबिटेट है, इसमें जो रहता है। अब इसमें डेफिनेटली रहने का मतलब वही होगा जो कॉन्शस हो, जो चेतना हो, तो वो जो रहता है उसका नाम पुरुष है, और जिसको आप आत्मा कहते हैं। इसी तरह ये जो होल कॉस्मस है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, वर्ल्ड है, वो भी पुर है। क्यों? इसको रोज फील करना पड़ता है। हमारे जानकारी में कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, इस कॉस्मस में, मतलब इस ब्रह्मांड में लाखों चीज रोज नष्ट हो जाते हैं, उसमें गैलेक्सीज भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं, प्लैनेट्स और स्टार्स भी हैं, या उनके अंदर जो चीजें हैं रोज मरते हैं, नष्ट होते हैं, उनके जगह हजारों लाखों मिलियंस बिलियंस चीजें उसकी जगह फील करते रहते हैं। ये यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली डेथ एंड बर्थ, डिस्ट्रक्शन एंड डिसोल्यूशन है ना, सृष्टि और प्रलय के मोड में 24 घंटे है ना 24/7 चलता रहता है। इसीलिए इस यूनिवर्स को भी पूर्ण कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कहां रहते हैं, इसी संसार में, इस ब्रह्मांड में, तो इसीलिए ये पूर्ण कहलाता है। तो इस ब्रह्मांड में जो समाया हुआ है, लेटा हुआ है, उसको पुरुष कहते हैं। तो दो तरह के पुरुष हैं, एक पुरुष आत्मा जो छोटा सा है, लिमिटेड है, इस शरीर में रहता है, एक व्यापक है, ऑल फॉरबिडिंग है, सब जगह फैलाए हुए परमात्मा, परम पुरुष। तो जो बात इस सुक्त में किया जाता है, इसका नाम है पुरुष सुक्त, तो इसका मतलब नहीं कि कोई मर्दों के बारे में या मेल्स के बारे में कोई बात हो रही है, अपितु पुरुष मतलब उस आत्मा के बारे में बात हो रही है, उस परमात्मा के बारे में बात हो रही है। तो इसका जो सिंगल वर्ड में जो वो जो आप बनाएंगे वो है कॉस्मिक बीइंग। इस पूरे संसार का जो ब्रह्मांड का जो स्वामी है, इस ब्रह्मांड का जो मालिक है, वही है पुरुष। इस सूक्त में जो जो हम अलग अलग चर्चा करेंगे अलग अलग मंत्रों में, तो परमात्मा को पुरुष के रूप में डिफाइन किया गया, कॉस्मिक बीइंग, और उसके कुछ चर्चा की गई। कुछ मंत्रों में जो यूनिवर्स है, मैटेरियल यूनिवर्स, उसको भी पुरुष कहा, द होल कॉस्मोस को उसको डिफाइन करते हैं। फिर कुछ मंत्रों में इसी सूक्त में ये जो सोसाइटी है, हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी, इसको भी पुरुष कहा, फिर उसको भी डिफाइन करता है, उसकी पार्ट्स को डिफाइन करता है। उससे पुरुष सूक्त ये जिसकी चर्चा हम आज करेंगे, एक दो संडे तक चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे 16 करीब मंत्र हैं और अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। तो इसकी ज्यादा जो जो फेमस हुआ, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है इंडियन सोसाइटी में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसकी जो शुरुआत होती है, जो सबसे पहला रेफरेंसेस मिलता है, वो इसी सूक्त में मिलता है। तो जिनको अपनी कास्ट सिस्टम को ग्लोरीफाई करना है, इसी को कोट करते हैं। जिसको कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलना है, तो वो भी इसी को कोट करते हैं। जिसको वर्ण व्यवस्था मतलब क्लास सिस्टम को बताना है, वो भी इसी को कोट करते हैं। मतलब जो शत्रु हैं, मित्र हैं, जो इसको पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, तो ये मंत्र और ये सूक्त उनके लिए बड़ा फेवरेट है, क्योंकि इसके बेस पर जो हिंदुओं को गाली देना है तो इसी के बेस पर देंगे। जिनको अपने आप को अपनी बुरी चीजों को जस्टिफाई करना है, वो भी इसी को कोट करेंगे। जिनको एकेडमिकली सच झूठ पता लगाना है, वो भी इसी को कोट करेंगे। सो इसकी इस सूक्त का प्रसिद्ध पुरुष शब्द के कारण नहीं है, इसमें जो आता है ब्राह्मणस्य मुखम आसीत् ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, उनका पहला रेफरेंस यहां मिलने के कारण इसकी प्रसिद्धि। तो आप ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं इस सूक्त की जो जो इंपोर्टेंस है। ओके, सहस्र शीर्षा पुरुष, वो जो पुरुष है आत्मा, जो हजार सर वाला है, सहस्राक्ष हजार आंख वाला है और हजार पैर वाला। अच्छा, जहां जहां इस तरह के ट्रांसलेशन मिलता है, सहस्त्र का मतलब हजार होता है संस्कृत में वैसे, पर जो लोग लकीर के फकीर होते हैं, लकीर का फकीर समझते हैं, मतलब जो बुक के कीड़े होते हैं है ना, बुक हुआ मतलब बुक्स में अगर लिखा है, जो लिखा है लेटर्स में, उस लेटर्स के मीनिंग को आज इट इज लेते हैं, ट्रांसलेशन को ही फाइनल मानते हैं, उसकी स्पिरिट को नहीं समझते। अगर वहां कमा भी लगा है तो वो कमा का भी कोई अर्थ निकालेंगे, फुल स्टॉप का भी निकालेंगे, पर उसकी स्पिरिट को नहीं समझते। और ज्यादातर जो वेदों को जो कॉमन व्यक्ति जब पढ़ता है तो उनको तो संस्कृत वगैरह आता नहीं, और किसी दूसरे लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन बहुत बाद में हुआ। तो वेदों का नॉन संस्कृत ट्रांसलेशन जो पहली बार दुनिया में हुआ वो किस इंडियन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि इंडियंस को तो आपको पता है, मैं हर प्रवचन में बोलता हूं, हमें अपनी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है, हमें अपनी पुरानी चीजों से बड़ी बड़ी बेकार लगता है, कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, मतलब हीन भावना है। तो जब तक हमें कोई गोरा व्यक्ति कुछ ना बताए किसी भी मामले में हम जगते नहीं है। तो यहां भी सेम चीज हुआ, वेदों के जो पहला नॉन संस्कृत ट्रांसलेशन अवेलेबल होता है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंटेड जो जर्मन फ्रेंच स्कॉलर है उनके द्वारा लिखा गया, मैक्स मुलर है, ग्रिफिथ है, विंटर नीट से कम दर्जनों वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जिन्होंने वेदों को पहली बार आम भाषा में, आम भाषा मतलब पहली बार अंग्रेजी में, फिर फ्रेंच में, जर्मन में, यूरोपियन लैंग्वेज में, और मजेदार बात देखिए किसी भी इंडियन लैंग्वेज में, संस्कृत में तो था अलग बात है, पर संस्कृत के दिन किसी भी हिंदी बंगाली तेलुगु तमिल में जब वो ट्रांसलेशन हुआ वो मुश्किल से 50-60, मुश्किल से 100-150 साल से या 200 साल से हम इंडियन लैंग्वेज में हमें इसकी ट्रांसलेशन मिलने लगा। शायद पहली बार स्वामी जी ने हिंदी में किया, स्वामी दयानंद जी ने, बाद में धीरे धीरे बाकी लोगों ने ट्रांसलेशन शुरू किया। पर मोस्टली ये जो कॉमन भाषा में अगर किसी लैंग्वेज में है वो भी इंग्लिश में, वो भी यूरोपियन लोगों के द्वारा ही हुआ। और अब तो धीरे, अच्छा, जो इंडियन विद्वानों ने जो वेदों की ट्रांसलेशन किया भी मॉडर्न इंडिया में, वो कोई डायरेक्ट वेद वेद पढ़ के नहीं किया, उन्होंने जो यूरोपियन ट्रांसलेटर जो ग्रिफिथ है, विंटर नीट्स है, मैक्स मुलर है, और भी दर्जनों दर्जनों हैं अलग अलग लैंग्वेज में, फ्रेंच में, जर्मन में और इंग्लिश में मोस्टली शुरू हुआ, तो उससे ट्रांसलेट किया, मतलब ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन हिंदी में, बंगाली तेलुगु तमिल जिस भी भाषा में हुआ उससे ट्रांसलेशन हो। तो ये इसीलिए बताना पड़ता है कि कैसे, क्योंकि हमारी खुद के लिटरेचर या अपनी कल्चर के बारे में डायरेक्ट नॉलेज ना होने से, दूसरों के थ्रू जानने के कारण से कुछ प्रोपागंडा या गलत चीजें फैलती है। उसका पहला नमूना है कि सहस्र शीर्षा पुरुषा, तो मिलता है कि हजार सर वाला, हजार आंख वाला, हजार पैर वाला, किसी एक ऑफुल पर्सन की ये डिस्क्रिप्शन मिलता है। पर ये हजार का मतलब यहां हजार नहीं, इन्यूमरियस होता है, असंख्यात होता है, जिसको आप इनमरेबल होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर पाए। नॉर्मली बातचीत में भी जब आप बातचीत करते हैं, कहीं आप जाते हैं किसी शो में या किसी प्रोग्राम में जहां बहुत लोग होते हैं, सपोज कहीं 10,000-20,000 लोग हैं और आप गए देखकर आए, आपने बोला वहां अनगिनत लोग हैं, जो आप काउंट नहीं कर सकते वो आपके लिए अनगिनत हो जाता है, वहां हजारों लोग हैं। ये जो हजारों लोग जब आप बोलते हैं, इट मीन्स थाउजेंड्स ऑफ पीपुल या हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, जस्ट टू शो दैट कि आपने काउंट करके नहीं बोला कि वहां 1,000 थे कि 1,200 थे कि 5,000, इतने लोग थे कि बहुत ज्यादा लोग थे। तो ये किसी भी लैंग्वेज में ये जो थाउजेंड्स या का जो यूज है वो जनरली एक बड़े नंबर के लिए किया जाता है, वो अलग बात है, आजकल थाउजेंड का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? अच्छा, नंबर की वैल्यू ना हमेशा हर जगह जमाने में, मतलब हर जमाने मतलब जब से ये करेंसी आने लगी तो करेंसी से होने लगा। अब हम बात बात पर मिलियंस ट्रिलियंस की बात करते हैं, क्योंकि मुंह में मिलियन ट्रिलियन चढ़ा हुआ है तो 1,000 बड़ा छोटा लगता है, पर अगर आप 200-500 साल पहले बात करो तो किसी के पास इवन 1,000 डॉलर भी या 1,000 रुपये भी होते थे, मतलब 100 साल पहले भी इट वॉज ए बिग थिंग, है ना। तो पहले तो बड़े बड़े ऑफिसरों को भी इंडिया में तनख्वाह मिलता था 5 रुपये, 10 रुपये, है ना, 20 रुपये, तो वो 20 रुपये आज के कितने लाखों के बराबर हो जाते हैं। तो हजारों मतलब अनगिनत, असंख्यात, अनकाउंटेबल नंबर्स। और अगर आप 1,000 के साथ भी चले तो प्रॉब्लम क्या होगा? देखिए कॉमन सेंस क्यों यूज करना जरूरी होता है, तो जिसके 1,000 सर होंगे तो उसके 1,000 हाथ तो नहीं होंगे ना, उसके तो 2,000 हाथ होंगे, तो 2000 पैर होंगे, इट्स अ कॉमन सेंस की बात है। तो व्हेन इट्स सेइंग दैट हजार सर, हजार हाथ, हजार पैर, तो ये गलत, क्योंकि हजार पैर में बाकी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। तो वो जो पुरुष परमात्मा जो अनगिनत सर वाला है, अनगिनत हाथ वाला है, अनगिनत पैर वाला है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, अनगिनत क्यों? क्या उसके सचमुच लाखों करोड़ों हाथ पैर सर है? उसका तो कोई भी ना हाथ है ना पैर है ना सर है, वो तो अकाय है, शरीर रहित है, मन रहित है, उसमें तो कोई बॉडी नहीं है। पर दुनिया में जितने भी सर वाले, हाथ वाले, पैर वाले हैं, वो सबके अंदर वो है ना। तो जितने प्राणी हैं, सब प्राणी के अंदर वो आत्मा है। तो जितने सर सर वाले हैं, जितने हाथ वाले हैं, उतने पैर वाले, तो परमात्मा उतने सर उतने पैर उतने हाथ वाला होगा। इसका भाव है जो सर्वव्यापक है, सब जगह मिलता है, ऐसा जो सहस्र शीर्षा पुरुष, ऐसा जो हजार पैर हजार अनगिनत हाथ पैर सर वाले परमात्मा क्या करता है? सब भूमिम विश्वतो वृत्वा, भूमि, भूमि का लिटरेरी ट्रांसलेशन होगा जमीन। तो जमीन मतलब अर्थ नहीं, द होल वर्ल्ड, द फ्लोर, सारे संसार को उसने चारों तरफ से हर तरह से आवृत करके, ढक करके, इन्वॉल्व जो कवर करके रखता है। मतलब हर कण में, जर्रे जर्रे में परमात्मा है, सूरज में भी वही, आकाश में भी वही, धरती में भी वही, मेरे अंदर भी वही, आपके अंदर भी वही, फोन में भी वही, कंप्यूटर में भी वही, जर्रे जर्रे में, सब जगह। वो किसी ऐसा चीज नहीं है जिसको उसने छोड़ा हो, हर किसी के किसी को अपने अंदर ढका रखा है, आप उसे बाहर चाहो तो जा नहीं सकते हो। ये मछली होते हैं पानी में, समुंदर में रहता है, तो मछली जहां भी दौड़े, जहां भी भागे, सोए, बैठे, उठे, रन करे, लड़ाई करे, कुछ भी करे, कहां करता है? समुंदर के अंदर ही करता है। हाँ, मछली के लिए थोड़ा ऑप्शन तो है, थोड़ी देर के लिए कुछ मछलियां ऐसे छलांग लगाती हैं, पानी के ऊपर आ जाते हैं, कुछ सेकेंड्स के लिए आ सकते हैं, क्योंकि समुन्दर लिमिटेड है और समुन्दर के बाहर भी जगह है। पर हम सबकी मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग नहीं, इंक्लूडिंग द सोलर सिस्टम, इनकी प्रॉब्लम है कि वो छलांग लगाए भी, जहां भी जाएंगे वहां परमात्मा है। क्यों? उसने सारे संसार को कवर तो कर रखा है, उसके बावजूद भी अत्यतिष्ठ दशांगुलम, उससे बियॉन्ड भी हैं। तो मतलब जो होल कॉस्मस है वो उस परमात्मा के अंदर है, पर परमात्मा उतना नहीं है। कॉस्मस, ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो भी लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब इट हैज ए लिमिटेशंस। वो परमात्मा उससे भी बियॉन्ड है। कितना बैंड है वो तो हम अगले सूत्र मंत्र में पढ़ेंगे, पर यहां एक बड़े अजीब शब्द आया कि वो दशांगुलम, दश कहते हैं टेन, दस अंगुल। वैसे तो नॉर्मल भाषा में अंगुली का मतलब ये फिंगर्स होते हैं, और टेन फिंगर्स, पर अंगुल का मतलब अंग से होता है, अंग मतलब बॉडी पार्ट्स। ये जो ब्रह्मांड है, संसार है, वो भी दशांगुल है, उसके भी 10 बॉडी पार्ट्स हैं। पांच महाभूत हैं, महाभूत जानते हैं ना, पृथ्वी, आपस, तेज, वायु, आकाश। और पृथ्वी का मतलब धरती नहीं, पृथ्वी वाला मतलब ये जो द होल यूनिवर्स जो है, उस वो पांच चीजों से बना है, पांच तरह के फॉर्म है, जो सॉलिड फॉर्म है, जैसे मिट्टी है, पहाड़ है, पर्वत है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये पृथ्वी है, मतलब जो सॉलिड फॉर्म है। आप जल, जल मतलब नहीं कि कोई पानी नहीं, जो भी लिक्विड फॉर्म है, एनीथिंग विच इज इन लिक्विड फॉर्म। तो इस मैटेरियल वर्ल्ड का कुछ चीजें हमेशा जल के फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनको जल तत्व कहते हैं। और कुछ मैटेरियल वर्ल्ड के कुछ चीजें किस फॉर्म में होते हैं? गैस फॉर्म में होते हैं, उसको वायु कहते हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन है, और ऐसे हजारों तरह के गैसेस हैं, एयर के अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसको वायु कहते हैं। और कुछ यूनिवर्स के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो एनर्जी फॉर्म में होते हैं, वो एनर्जी आग हो, या अलग अलग तरह के फॉर्म में हो, वो लाइटनिंग हो, सूरज हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी के हजारों फॉर्म होते हैं। इसलिए आग के दूसरा नाम होता है वैश्वानर। वैश्वानर मतलब संसार में, विश्व में हर वो चीज जो बना हुआ है उसके अंदर भी एक एनर्जी है, वो उसके अंदर फैला हुआ है। और जो पांचवा फॉर्म है यूनिवर्स का वो है आकाश, वैक्यूम, एम्प्टीनेस, स्पेस, है ना। जो ये जो स्पेस है या जो एम्प्टीनेस है वो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव मतलब वो कोई एब्सेंस नहीं है। 100 साल पहले तक तो मॉडर्न साइंस में माना जाता था कि एम्प्टीनेस का मतलब जहां कुछ भी नहीं है। अब मॉडर्न साइंस भी कहता है कि नहीं, व्हेन यू आर सेइंग एम्प्टीनेस मतलब नथिंग इज देयर, वहां कुछ होता है, वो कुछ होना सिर्फ मैनिफेस्टेड या विजिबल नहीं है, दृश्य नहीं है, इसीलिए हम इसको एम्प्टी कहते हैं। तो आकाश को आकाश का मतलब नहीं है कि वो एम्प्टीनेस है, पर एम्प्टीनेस का अर्थ नहीं कि देयर इज नथिंग, देयर इज समथिंग बट विच इज इनविजिबल, बहुत शटल फॉर्म है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इट एम्प्टीनेस। तो संसार के पांच फॉर्म है, उसमें एक फॉर्म है एम्प्टीनेस, खाली आकाश। और उस पांच संसार के पांच तत्वों से बना, पांच फॉर्म वाले जो संसार, वो पांच चीजों से बना है। वही रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जो उसकी तन्मात्राएं हैं। तो पांच तन्मात्रा और पंच महाभूत से बना ये संसार, ये दशांगुल वाला संसार, परमात्मा इसके अंदर सबके सबको अपने अंदर समाते हुए भी इससे अत्यतिष्ठ ट्रांसेंड्स, वो इसे एक्सीड करता है, बाहर भी रहता है। और हमारा जो अपना जो लाइफ है, शरीर है, ये भी दशांगुल है। तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि पांच प्राण और चार जो पांच प्राण मतलब जो प्राण अपान व्यान समान उदान और जो चार अंतःकरण है, इनर सेंसेस से चित्त मन बुद्धि अहंकार और जीवात्मा, इन दसों के कॉम्बिनेशन से हमारा एग्जिस्टेंस है। तो ये भी दशांगुल है। और तीसरा, ये जो हृदयाकाश है, जिसको जो लोग वेदांत क्लास में आते हैं या उपनिषद क्लास में वो पढ़ते हैं, हृदयाकाश, वो आत्मा कहाँ रहता है? वो पूरे बॉडी में नहीं रहता, एक पर्टिकुलर जगह पर रहता है, हमारे जीवात्मा हृदय में। हृदय का मतलब हार्ट, और हार्ट का मतलब इस ये फिजिकल हार्ट की बात नहीं कर रहा है, जो ब्लड पंप करता है, जो कि सर में, सर के नीचे जिस जहां पर ब्रेन है, वहां स्तन जैसा, ब्रेस्ट जैसा एक छोटा सा अंगूठे के बराबर जगह है, वहीं पर आत्मा रहता है। और आत्मा जब भी परमात्मा को जानता है, वहीं पर जानता है। और उस हृदय का जो हार्ट से लेकर के जो आपकी हार्ट तक, जो फिजिकल हार्ट तक जो दूरी है, वो 10 अंगुलों के बराबर होता है। तो वहीं पर आत्मा विचरण करता है। तो वो जो परमात्मा या आत्मा, जो दशांगुल रूप ब्रह्मांड, दशांगुल रूपक शरीर के अंदर समाये हुए हैं, इससे भी बेअंड है। तो फिर वो आत्मा क्या करता है? पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं हुतामृतस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। वो जो पुरुष, जिसकी चर्चा हमने की, 1000 सर वाले, 1000 पैर वाले आदि आदि, अर्थात अनगिनत अनकाउंटेबल सर पैर वाले, जो कि सारे संसार को समेट रखा है और संसार से बाहर भी है, वो ये जो कुछ भी प्रेजेंट में है, जो कुछ भी पास्ट हो चुका है और जो कुछ भी भव्य होने वाला है, जिनमें पोटेंशियल है होने का, मतलब फ्यूचर में होने वाला, वो सब कुछ भी परमात्मा ही है, अर्थात परमात्मा इन सब के अंदर है। उत अमृतस्य ईशान, और सिर्फ इतना नहीं, वो उससे बियॉन्ड भी, जो अमृतत्व, जो इमोर्टैलिटी है, इटर्नलिटी है, उसका भी मालिक वही है। यद अन्येन अतिरोहति, और जो मरते रहते उनका भी मालिक वही है। मरते कौन रहते हैं? जो अन्न से बढ़ते हैं। अन्न समझते हैं? अन्न मतलब अनाज, मतलब जो लोग खाते पीते रहते हैं ना वो सब मरते हैं, मतलब जिनको सरवाइव करने के लिए कुछ खाना पड़ता है, अन्न लेना पड़ता है, वो सब मोर्टल्स होते हैं। तो मरणशील या जो मोर्टल्स होते हैं उसको डिफाइन करने का एक तरीका है कि जो अन्न, वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, जो भी खाते पीते हैं, आपके प्लांट्स भी खाते हैं, तो जो भी खाने पीने पर जिंदा रहते हैं वो सब, उनको सब मर्त्य या मरणशील कहते हैं। तो दुनिया में दो तरह की चीजें, जो भी मरणशील हैं, मरने लायक हैं, और वो क्यों? अन्न के कारण, अन्न को खाते पीते रहते हैं वो, हो या जो अमृत है, जो इमोर्टल है, कभी नष्ट नहीं होते हैं, इटर्नल है, उन सबका स्वामी वही परमात्मा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो हमारे लिए होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। जो पैदा होता है या जो बनता है उसका एक पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो बनने से पहले नहीं था इसलिए उसके पास्ट काउंट होता है, क्योंकि उसकी जो बिगिनिंग का एक पॉइंट है, सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ माय बिगिनिंग, मैं पैदा हुआ इस तारीख को, उससे पहले मेरा पास्ट है, मैं था नहीं। और जो मेरा एंड पॉइंट ऑफ एंड, उसके बाद मैं नहीं रहूंगा। तो क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज बना है, पैदा होना है ना, तो उसका एक पॉइंट ऑफ बिगिनिंग मतलब आदि आरंभ है, एक पॉइंट ऑफ एंड और अंत है। तो क्योंकि आरंभ और अंत है तो आरंभ से पहले पास्ट, जो उसके बाद फ्यूचर है। इसीलिए हमारे लिए टाइम जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि हम भी टेम्परेरी होते हैं, और क्योंकि हम टेम्परेरी है इसीलिए हमारे टाइम में डिवीजन है। डिवीजन मतलब ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, क्योंकि हम किसी भी पीरियड में, ध्यान रखिए, किसी भी पीरियड टाइम में हम एक जैसा नहीं होते हैं। हम 5 मिनट पहले कुछ और होते हैं, 5 मिनट बाद कुछ और होते हैं। आपके अंदर हजारों सेल्स 5 मिनट के अंदर मर के नए सेल्स पैदा हो जाते हैं, आपकी माइंड चेंज हो जाता है, आपकी बॉडी चेंज होता है। आप 5 मिनट पहले जितना जवान थे, आप 5 मिनट ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, और आप सिर्फ नहीं, सारी दुनिया में हर चीज, ठीक है, आपको पता नहीं चलता, आपको पता लगता है 10 साल 20 साल के बाद पता लगता है, पर एवरी मोमेंट, हर क्षण हमारा बदलाव होता रहता है, जो दिखता तो बाद में पर बदलाव हमेशा रहता है, क्योंकि एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो एवरी मोमेंट देयर इज ए पास्ट जो बीत गया, देयर इज ए प्रेजेंट, और जो आ रहा है वो फ्यूचर है। पर सचमुच क्या टाइम का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है? नहीं होता है, टाइम हमेशा एक ही होता है। और परमात्मा के लिए टाइम ना कोई फ्यूचर है, ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, वो हमारे लिए जिसको हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहते हैं, परमात्मा के लिए एवरीथिंग इज प्रेजेंट, सब कुछ वर्तमान है, एक ही नजर में होता है। तो जो कुछ भी बीत चुका है वो हमारे नजर से बीत चुका है, जो कुछ होने वाला है वो हमारे प्रेजेंट के हिसाब से होने वाला, क्योंकि हम लिमिटेड हैं। हम, जब मैं कहता हूं हम, तो हम मतलब सिर्फ हम और आप नहीं, इंक्लूडिंग द सूरज है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब टेम्परेरी हैं। हाँ, सबकी पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट है। हम मैक्सिमम 100 साल जीते हैं, कोई 1000 साल जीता है। ये नदियां हैं, रिवर्स हैं, ये भी बदलते रहते हैं, 200, 500, 1000 साल में इनकी धाराएं, इनकी फ्लो बदल जाती हैं, कॉन्टिनेंट्स बदल जाते हैं, देश बदल जाते हैं। अब हम सुनते हैं ये क्लाइमेट चेंज के कारण, क्योंकि समुद्र के पानी बढ़ रहा है, तो बहुत सारे आइलैंड्स जो आज हैं, तो शायद 10, 20, 50 साल के बाद उनमें बहुत सारे आइलैंड डूब जाएंगे, फिर कहीं नई जगह, नई अगर कुछ पैदा हो जाता है। तो ये हर कोई, किसी का टाइम 10 मिनट का है, किसी का 10 साल है, किसी का 100 साल है। ये सूरज है, स्टार्स हैं, इनकी ट्रिलियन या मिलियन ईयर्स लाइफ स्पैन है, किसी की ट्रिलियन ईयर लाइफ स्पैन है, पर है तो टेम्परेरी ना, परमानेंट तो नहीं है ना, इटर्नल तो नहीं है ना। तो जो कुछ भी टेम्परेरी है वो सब का उसका मालिक भी वही है, और जो कुछ अमृत है, नष्ट नहीं होता है, नष्ट कौन नहीं होता है? आत्माएं ये प्रकृति मतलब इस संसार की जो जो ओरिजिनल फॉर्म है वो भी नष्ट नहीं होती है, तो इन सबका भी मालिक वही परमात्मा है। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। पर ये मत सोचना कि परमात्मा की जो ग्रेटनेस है वो इतने ही है जितना बड़ा कॉस्मोस है, यूनिवर्स है या ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वो सब उसकी क्या धरा है, वो उसकी ग्रेटनेस है, ग्लोरी है। तुम्हारे बॉडी भी अपने आप में एक चमत्कार है, मिरेकल है। तुम्हारे लाइफ भी मिरेकल है। ये हवा, पानी, आकाश, समुंदर सब मिरेकल है, सब उसकी ग्लोरी है। पर तुम इतने में चमक नहीं जाना, इतने में ही घबरा नहीं जाना कि उसकी इतनी इतने सारे ग्रेटनेस है। कहते हैं तो ज्यायांश च पुरुष, उससे भी ज्यादा है ये परमात्मा। कितना ज्यादा? पादोस्य यह अभवत, पादोस्य विश्वाभूतानि, द होल वर्ल्ड, जितने जो होल कॉस्मस है वो उसका एक पाद है, एक क्वार्टर है। त्रिपादस अस्य अमृतम दिवि, और उसका जो थ्री क्वार्टर से जो थ्री फोर्थ है वो बियॉन्ड आवर ज्ञान, हमारे नॉलेज है, वो इस कॉस्मस से परे है। दो श्लोक साथ ले लेते हैं फिर वो उसको कंबाइंड करने में आसान होगा। त्रिपादूर्ध्वा उदयित पुरुषः पादोस्येहाभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनाशन नशने अभि। वो जो परमात्मा है त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुष, वो जो पुरुष मेल नहीं, वो जो परमात्मा जो तीन पाद तीन क्वार्टर ऊपर रहता है और उसका एक पाद एक क्वार्टर ये सारा ब्रह्मांड में है, ततो विश्वं व्यक्रामत, और वो इस इसीलिए वो सारे एंटायर वर्ल्ड में समाया हुआ है, इंक्लूडिंग दोज अशन खाते रहे खाने पीने वाले मीन्स एनिमल्स और लिविंग बींग्स एनिमेट्स, और अनशन जो खाते पीते नहीं है इनएनिमेट्स लाइक पहाड़ पर्वत पत्थर आदि आदि जड़ और चेतन तत्व तो इन सब के अंदर समाया हुआ है। पाद शब्द इंटरेस्टिंग है ना, तो हिंदी में आप पाव कहते हो, बाजार में जाते हो ना सब्जी लेने या कुछ लेने तो कहते हैं एक पाव दे दो, दो पाव, तीन पाव दो, आधा किलो दो। इंग्लिश में भी आप क्वार्टर कहते हो। संस्कृत वो जो पाव शब्द है वो संस्कृत के पाद से बना, पाद का मतलब क्वार्टर। क्यों बना? संस्कृत में भी वैसे पाद का मतलब फुट होता है, लेग है ना, पैर, पर फिर वो क्वार्टर के सेंस में क्यों बना? क्योंकि नॉर्मली जो ज्यादातर जो जानवर होते हैं, जो हम इंसान जिन जानवरों से डील करता है, मोस्टली वो चार पैर वाले होते हैं। तो चार पैर में एक पूरा बॉडी होता है, तो एक पैर मतलब उसके वन क्वार्टर। देखिए दुनिया में लैंग्वेज ऐसे ही यूज होते हैं, लैंग्वेज ऐसे ही वर्ड्स ऐसे ही इवॉल्व होते हैं, किसी ना किसी फेमस जो चीजों को देख करके फिर हम उसी से नए शब्द बनाते हैं। तो चार पैर में मतलब चार क्वार्टर में एक फूल होता है। परमात्मा अगर हंड्रेड है मतलब फूल है, तो उसका ये जो पूरा संसार है, यूनिवर्स है, जिसमें गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, और उस प्लैनेट में हम आप भी हैं, ये सब, और ये पूरा स्पेस जो आकाश है, ये सब कुछ मिला करके उसका उसके वन क्वार्टर पर है, और उसकी जो थ्री क्वार्टर्स हैं त्रिपाद, वो ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर नहीं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है, बियॉन्ड आवर कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारे ज्ञान की या जो कॉस्मस को जिसको हम जान सकते हैं उससे वो बियॉन्ड है। और जो जिसको हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, ये जो होल ब्रह्मांड या कॉस्मस है, ये पूरा का पूरा बना हुआ नहीं है। वैसे भी आप मॉडर्न ना कॉस्मोलॉजी में आप पढ़ते हैं या सुनते हैं कि जो ये जो यूनिवर्स है, आपको एक स्लाइड दिखाते हैं फिर समझ में आएगा। ये जो डायग्राम है ये गूगल से लिया है, जो जिसका संस्कृत से कोई लेन देन नहीं, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट जो बताते हैं कि ये जो यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं वो जो विजिबल है, मतलब जिसको हम जान सकते हैं, नहीं जानते हैं अलग बात है, या जो होल वर्ल्ड जो है जो भी मैनिफेस्टेड है, वो सिर्फ मैक्सिमम 1/4 मतलब 25% है। जो यूनिवर्स की जो पोटेंशियल है, मोस्ट ऑफ यूनिवर्स इवन जो कॉस्मस है वो अभी भी डार्क एनर्जी के रूप में, मतलब ऐसी एनर्जी जो अभी भी अनयूज्ड है, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है। और उसकी परसेंटेज क्या है, अबाउट 74% अलग अलग जगह अलग अलग नंबर है, मतलब 3/4 ध्यान रखिए, त्रिपाद ऊर्ध्वम है ना, नहीं तो 3 पाद जो 3/4 से यूनिवर्स का भी वो अनमैनिफेस्टेड अनमेड फॉर्म में है, और जो मेड बना हुआ है वो सिर्फ 24 या सपोज 25% मतलब 1/4 है। उसमें भी बड़ी मजेदार बात है, वो जो जिसको हम मैनिफेस्टेड भी कहते हैं उसमें भी सिर्फ 0.4% होता है, जिसको हम स्टार्स या गैलेक्सीज कहते हैं उसमें भी 3.6% जो होता है वो सिर्फ गैस के फॉर्म में है, और जो बाकी 23% वगैरह है वो प्रॉपरली मैनिफेस्टेड नहीं हुआ है, उसको आप डार्क मैटर कहते हैं। तो यूनिवर्स अपने पूरे फॉर्म में मैनिफेस्टेड नहीं है। पुरुष सुक्त को ध्यान दीजिए, 1/4 उसका सारा संसार है, 3/4 उसका बियॉन्ड द मीन्स अनमैनिफेस्टेड में है। और जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं कि जो यूनिवर्स जो है एक्चुअल यूनिवर्स है उसका अभी भी 75% करीब करीब वो सिर्फ डार्क है, और सिर्फ उसके 25% किसी ना किसी फॉर्म में है, उसमें भी 23% डार्क मैटर फॉर्म में है, मतलब वो मैटर जो अभी तक प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं आए हैं, एनर्जी से तो कन्वर्टेड हो चुके हैं मैटर के रूप में, पर मैटर भी अभी शटल फॉर्म में है जो प्रॉपर इसमें नहीं आया है। ये इसीलिए जानना कंपेयर करना जरूरी है, तो कम से कम साइंटिफिकली भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं हमारे वैदिक विचारों का कि कितना लाखों साल पहले उनके भी विचार कितना आज की चीजों में मैच करता है। तो एक पुरुष जो परमात्मा सारे संसार में फैला हुआ है, और पूरा संसार उसकी सिर्फ 1/4 में ही है, बाकी 3/4 उसकी बियॉन्ड दैट है। तो इसीलिए ये कभी मत सोच बोलना या सोचना कि परमात्मा कितना बड़ा है, जितना बड़ा जब आप कहते हैं सारे संसार में परमात्मा फैला हुआ है, तो परमात्मा संसार के बराबर नहीं है, पूरा संसार उसका सिर्फ 1/4 है ना, बाकी 3/4 उससे बियॉन्ड है। और वो जो परमात्मा जो जिसका सिर्फ 1 पाद सारा यूनिवर्स को समाया रखा है, अच्छा इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आगे जाकर के मुझे याद आया, पुराणों में एक स्टोरी आप पढ़ते हैं ना, जो भी वैदिक कंसेप्ट होता है आगे जाकर के पुराण मतलब जो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट लिखे गए ना, ये ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण आदि, तो उस फिलोसॉफिकल बातों को वो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी के रूप में फिक्शंस, इमेजिनेशंस और रियल रियलिटी का मिक्सचर को पुराण कहते हैं। तो पुराणों में आप एक स्टोरी पढ़ते हैं ना, वो असुरों का राजा बलि, तो वो बड़ा भक्त था, तपस्या खूब की और खूब ताकत पाया, जब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो उसने चाह कि मैं सारे संसार को जीत लूं। ये जो लोग आप लोग उपनिषद क्लास में आते हैं, अभी लोग पढ़ते हैं या वेदांत दर्शन में भी, ये पहले हमारे शास्त्रों में लिखा होता है, ज्ञान सबको नहीं देना, तो ज्ञान देने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो क्वालिफाइड हो, पर्टिकुलर ये क्वालिफिकेशन हो, उसी को ज्ञान देना चाहिए। जैसे उसमें आता है उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि जो गुरु बताए उसको समझ में आता है, और उस ज्ञान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, जो सिखाता है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, जितेंद्रिय खास करके आत्मज्ञान हो, वो सेंसेस को कंट्रोल किया होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं। ये चीजें होने पर ही उसको ज्ञान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये प्राचीन जमाने में होता है, आज भी वेस्टर्न वो जो एजुकेशनल सिस्टम में भी सेम चीजें हैं, हर किसी को हर कुछ पढ़ने को नहीं मिलता, मतलब इन जनरल तो हर कोई कुछ भी पढ़ सकता है, पर ही हैज टू क्वालिफाई, ही और शी हैज टू क्वालिफाई समथिंग टू लर्न दैट कोर्स, है ना। मतलब आपकी कुछ परसेंटेज पढ़ाई की, तो हाई स्कूल में इतने नंबर्स होने चाहिए, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो ऐसा थोड़े कि हर कोई जाके हार्वर्ड में पढ़ लेता है, हर कोई इंजीनियरिंग पढ़ लेता है, हर कोई मेडिकल साइंस पढ़ लेता है, नहीं ना। तो कुछ क्वालिफिकेशंस आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, कुछ चीजें जो रिक्वायर्ड है, तब जाकर आपको उसको अलाउ करते हैं। ऐसा नहीं कि आप 10th में 10 बार फेल हुए, मैथ में 0 लाते हैं, तब भी आपको गए, और कोई भी खराब से खराब मेडिकल कॉलेज भी आपको ले जाएगा, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना। तो कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं, तो प्राचीन काल में भी होते थे। तो अगर ऐसा ना करते क्या नुकसान होता है? तो उसमें वो पुराण की कहानियों में आप पढ़ते हैं, ये असुर लोग भी बड़े ज्ञानी विद्वान होते थे, पर जैसे ही असुर मतलब बुरे लोग, जब बुरा आदमी बड़ा ज्ञानी होता है, पावरफुल, कुछ जान जाता है, स्किलफुल होता है, वो क्या करता है, वो हर चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। तो असुर जब ज्ञानी हो जाते हैं, उनका पहला कोशिश होता है तीनों सबको जीत लेना, सबको अपने कब्जे में करना, और अपने आप को गॉड घोषित करना, भगवान घोषित करना। तो बलि भी वैसे तो अच्छा आदमी था, दान पुण्य करता था बहुत, पर उसमें वही सुपर एम्बिशन हो गया कि मैं सारे संसार का, मुझे ही सब भगवान बोने। तो फिर विष्णु अवतार लेकर आते हैं, कौन सा अवतार? वामन। वामन समझते हैं, द्वार। तो उनको देवताओं ने कहा, जाओ भाई इसको कंट्रोल करो, जब भी कुछ गड़बड़ी होती है, ब्रह्मा या शिव वो वैसे ही मस्ती में होते हैं, कोई ज्यादा तारीफ कर ले वो दे देते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो फिर विष्णु जी आते हैं, ये पुराण की स्टोरी सुना है, तो वैदिक जो सिद्धांत है उससे थोड़ी कनेक्टेड है। तो विष्णु वो द्वार वामन अवतार लेकर आते हैं, तो कहते हैं भाई ब्राह्मण, आप तो दानी हो, कुछ भी मांगो देते हो, मुझे भी कुछ दो। तो बलि ने पूछा, बलि क्या चाहिए? बस कुछ नहीं, मुझे अपने, मेरे 3 पैर हैं, 3 पैर रखने के लिए जगह चाहिए। 3 पैर कहाँ है ना, एक इनविजिबल है, ना 2 विजिबल है। अच्छा ठीक है, पैर रखो। तो उन्होंने 1 पैर रखा। वाली ने सोचा कि छोटा सा आदमी है, छोटे छोटे पैर है, कितना जमीन चाहिए होगा। तो उसने 1 पैर रखा तो पूरी धरती इससे आ गई। अच्छा भाई मैं दूसरे पैर कहाँ रखूं? तो मैं धरती तो चली गई, चलो ये अंतरिक्ष है, मिड स्पेस है, वहीं रख दो। तो दूसरे पैर रखा दो, पूरा अंतरिक्ष भर गया। बोले तीसरे पैर कहाँ रखूं? मैं तीसरे पैर कहाँ है, वो पेट से एक दूसरा पैर निकल गया। बोले स्वर्ग में रख दो। तो तीनों लोगों में वो पैर रख दिया, नहीं उसकी थे स्वर्ग में नहीं, तो वो स्वर्ग में और पृथ्वी में पैर रखा, तो तीसरा पैर कहीं रखो और कोई जगह नहीं था। तो बाली ने कहा मैं क्या करूं, आपने तो स्वर्ग भी और पृथ्वी भी तीनों दोनों कब्जा कर लिया, अब अंतरिक्ष तो उसके बीच में आ गया। तो बोले एक जगह है जहां मैं तुम्हारा ये पैर रख सकता हूं। बोले क्या? तुम्हारे सर पे रख सकता हूं। उन्होंने सर पे रखा तो सर को इतने जोर से दबाया कि वो जमीन के नीचे चला गया। खैर ये तो स्टोरी है, पर स्टोरी में मैसेज वही है, तीन पाद। वो जो 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 कंसेप्ट है, तीन पाद, थ्री क्वार्टर्स, परमात्मा का एक पाद तो सारे क्वार्टर तो सारे संसार में समाया हुआ है, पर उसका जो थ्री क्वार्टर से वो उससे बियॉन्ड है। इसीलिए दूसरे श्लोक में वो कहा, पुरुष जो कुछ भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है वो सब कुछ परमात्मा है, पर एतावानस्य महिमा, सिर्फ इतनी उसकी महिमा नहीं, उससे भी बियॉन्ड है जो हमारे ज्ञान से परे है। अगली बार हम जानेंगे कि उस जो परमात्मा से सृष्टि होती है, ये यूनिवर्स जो जो वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स, जो विराट रूप में अलग अलग तरीके से यूनिवर्स पैदा होता है, फिर इस यूनिवर्स से कैसे ह्यूमन सोसाइटी पैदा होता है, फिर इस अलग अलग पशु पक्षी प्राणी पैदा होते हैं, फिर ह्यूमन
ह्यूमन
बींग
बींग्स
आता
आता
है।
है, ह्यूमन बींग में वो जो कंट्रोवर्शियल मंत्र है ब्राह्मण और क्षत्रिय वाला, उसका क्या सेंस है वो हम अगले बार समझेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
किसी के
किसी के
पास
पास
कोई
कोई
सजेशन
सजेशन हो,
हो, कोई
कोई
स्पेसिफिक
स्पेसिफिक
मंत्र
मंत्र
किसी
किसी
को
को
समझना
समझना
है,
है
आप
आप
मुझे
मुझे
भेज
भेज
सकते
सकते
हैं।
हैं।
अभी
अभी
कुछ
कुछ
दिन
दिन
तक
तक
हम
हम
ये
ये
मंत्र
मंत्र
सीरीज
सीरीज
रखेंगे
रखेंगे
वेद
वेद
मंत्रों
मंत्रों
को
को
समझने
समझने
के
के
लिए,
लिए,
तो
तो
आप
आप
मुझे
मुझे
सजेस्ट
सजेस्ट
कर
कर
सकते
सकते
हैं
हैं
अगर
अगर
किसी
किसी
के
के
मन
मन
में
में
कोई
कोई
सजेशन
सजेशन
है।
है।
तो
तो
ये
ये
जो
जो
मैं
मैं
मंत्र
मंत्र
सब
सब
ले
ले
रहा
रहा
हूँ
हूँ
वो
वो
भी
भी
किसी
किसी
ना
ना
किसी
किसी
सजेशन
सजेशन
पर
पर
ही
ही
ले
ले
रहा
रहा
हूँ,
हूँ,
तो
तो
अच्छा
अच्छा
रहेगा
रहेगा
कि
कि
हम
हम
इसको
इसको
डेल
डेल
रहे
रहे
हैं।
हैं।
बहुत
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 धन्यवाद।
धन्यवाद।
थैंक
थैंक
यू
यू
वेरी
वेरी
मच।
मच।
नमस्ते।
नमस्ते।